जय राधा माधव कुंज बिहारे, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारे, यमुना तीरावन चारे, यमुना तीरावन चारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारे, यमुना तीरावन चारे, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ కృష్ణ కృష్ణ హరి 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 రామ హరి రామ 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 హరి 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 కృష్ణ 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 హరి 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 రామ హరి రామ 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 హరి హరి హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరి 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 రామ హరి రామ 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 హరి హరి రాధా గిరిధరి రాధా గిరిధరి రాధే రాధే జయ జగన్నాథ జయ జగన్నాథ బలతే బాజయ సుభద్ర నిత్యాయ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నిత్యాయ గౌర హరి జయ జయ ప్రభుపాద 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 జయ జయ ప్రభుపాద జయ జయ ప్రభుపాద 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 జయ విష్ణుపాద పరమహంస పరివృతాచార్య అష్టోత్సవ సుమతిష్టివైంగ్ర శశీ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదికి ఇస్కాన్ సంస్థపకాచార్య సేవియర్ ఆఫ్ ద హోల్డ్ వరల్డ్ శ్రీల ప్రభుపాదికి నామాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్ కి అనంత కోటి వైష్ణవ వృందకి ప్రేమ్ సే బోలో జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది శ్రీ గౌరభక్త వృందకి గౌరభక్త వృందకి All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga, Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnane Natimirandasya Jnananjana Shalakya Chakshur Mirtam Jena Tashmai Shri Gurave Nama Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadapi Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapada Kamalam Shri Guru Namashnamamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathambitam Tam Sajivam Satvaitam Sadvadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padhan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सभी भक्तों को इस संडे लव फीस्ट कार्यक्रम में आमंत्रित है। तो वैसे मुझे इस संडे लव फीस्ट में कुछ कहने के लिए जब कहा तो मैं सोच रहा था कि क्या बोलना है। तो हाल ही में दो दिन पहले हनुमान जयंती हुआ तो हमने सोचा कि कुछ हनुमान जी के विषय में चर्चा किया जाए। हनुमान जो कि पूरे विश्व भर में विख्यात है, हो सकता है कि अन्य देवी देवता और कृष्ण के विषय में भी हो सकता है कि किसी को इतना परिचित नहीं होगा जितना हनुमान जी के विषय में लोग परिचित हैं। तो इसीलिए वो जो हनुमान जो कि प्रभु रामचंद्र जी के एकनिष्ठ सेवक, तो वैसे सेवक के विषय में अगर सुनेंगे तो हमारा चित्त भी शुद्ध होगा। तो बताया जाता है हनुमान भगवान रामचंद्र जी की सेवा में इतने तलीन रहते थे कि एकमात्र हनुमान काफी होता था सारे सेवकों के एक सेवा करने में, और वो समर्थ थे। तो ऐसे होता था कि बाकी जब सेवक लोग जब सेवा के लिए जब उतरते थे तो हनुमान काफी होता था, बाकी सेवकों को सेवा करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता था। तो जितने भी सेवक लोग थे सब हताश हो गए, सब परेशान हो गए कि हमें सेवा का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है, ये हनुमान ही पूरा कर रहा है। तो हनुमान केवल वन मैन शो थे। तो सब सेवकों के लिए ये बहुत बड़ा एक परेशानी या बहुत बड़ा एक समस्या उत्पन्न हो गया तो सभी लोग ने क्या किए, मिलकर एक कमिटी तैयार किया, जिस कमिटी में उन लोगों ने यह तय किया कि अब हम सेवा बांट के लेंगे, जिसके बीच में कोई बीच में उतरेगा नहीं। तो उस कमिटी में एक मुख्य था जिन्होंने रजिस्टर्ड बनाया और जिसके अंदर सारे सेवकों का अलग अलग सेवा लिख दिया गया। अब हुआ यूं कि जब हनुमान जब रामचंद्र जी की सेवा के लिए जब आए तो दूसरे सेवकों ने उन्हें टोक दिया, जाओ जाकर देखो तुम्हारा यहां सेवा नहीं है। तो इन्होंने कहा क्यों नहीं है, अगर है तो जाकर रजिस्टर में देखो। तो हनुमान गए रजिस्टर में, पूरा नाम देखा, कहीं नाम ही नहीं है। हनुमान को पता लग गया जरूर इन लोग मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। तो हनुमान ने क्या किया, सीधे जाकर प्रभु रामचंद्र जी के समक्ष खड़े हो गया। तो हनुमान तो उससे भी चतुर थे, तो बाकी सेवक के जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा यहां क्यों खड़े हो, नहीं मैं सेवा के लिए खड़ा हूं, यहां कोई सेवा नहीं है, जाओ यहां से। नहीं, एक सेवा लिखने भूल गया, कौन सा सेवा, जब प्रभु रामचंद्र जी को जब जबाई आएगी तो चुटकी बजाने वाला कोई चाहिए। तो रामचंद्र जी जब जबाई लेंगे तो चुटकी बजाने वाला कोई चाहिए। तो उसकी बोलती बंद, कोई कुछ नहीं बोल पाया। तो इतने में दूसरा व्यक्ति कहने, ठीक है जब रामचंद्र जी को जबाई आएगी तब आना, अभी जाओ। जबाई थोड़ी बोलकर आती है, कभी भी आती है, इसलिए पहले से सतर्क रहूंगा, 24 घंटा मैं रामचंद्र जी के मुख में देखूंगा। तो हनुमान सारे सेवकों से सर्वश्रेष्ठ सेवा को प्राप्त किया, प्रभु रामचंद्र जी की निजी संगी को प्राप्त किया। तो हुआ यूं कि एक समय प्रभु रामचंद्र जी को जबाई आ गई, आ कर गए, उसी समय हनुमान जी चुटकी बजाना शुरू किया। अब जब चुटकी बजाना शुरू किया और रामचंद्र जी जबाई भी लेना शुरू किए और दोनों में ऐसे तालमेल चला कि इनकी जबाई भी बंद नहीं हुई, उनकी चुटकी भी बंद नहीं हुई, चलता रहा। सब हताश हो गए, क्या हो रहा है, सब हैरान परेशान, सभी देख रहे कि हमने ऐसा इतना लंबा जबाई किसी का देखा नहीं। तब हुआ यूं कि लक्ष्मण ने वैद्य को बुलाए, चिकित्सक आकर उनका तपास किया और पता लगा, चिकित्सक भी कहने लगा मैंने बहुत सारी बीमारी देखी है, ऐसी बीमारी आज तक नहीं देखा। तो और हैरान, फिर लक्ष्मण पूछे रामचंद्र जी ये क्या हो रहा है, अभी आप ही बताइए। रामचंद्र जी इशारा करके कहने लगे हनुमान को कहो चुटकी बजाना बंद करो। तो जब हनुमान ने चुटकी बजाना बंद किया तब प्रभु रामचंद्र जी की जबाई पूरी हुई। तो वैसे हनुमान को सेवा नहीं होने के बाद भी हनुमान सेवा ढूंढने का बहाना ढूंढते थे। देखो हमारा कितना विपरीत विचार है, हमारे पास सेवा होने के बाद भी हम दूसरा बहाना ढूंढते कि कैसे सेवा ना करें, लेकिन यहां पर हनुमान के पास सेवा न रहते हुए भी वो सेवा के बहाने के लिए खोज कर सीधे रामचंद्र जी की सेवा में लग जाते थे। और इतनी सरलता थी, इसीलिए सुंदर कांड जो रामायण में जो प्रसंग आता है, सुंदर कांड किसको कहा गया है, सुंदर कांड इसलिए कहा गया है क्योंकि उस सुंदर कांड में श्री हनुमान जी के सुंदर गुणों का वर्णन आता है कि कैसे हनुमान जी ने प्रभु रामचंद्र जी की सेवा सुंदर ढंग से की है, और इसीलिए उस प्रसंग को सुंदर कांड करके पुकारते हैं। और वाकई हनुमान जी के अंदर ऐसी सरलता थी, बताया जाता है कि एक समय की बात थी कि जब सीता देवी जब अपने मांग में सिंदूर भर रही थी तब उसी समय हनुमान जी ने देख लिया कि सीता जी कुछ कर रही है। तो हनुमान ने पूछा मैया ये क्या कर रही हो, तो सीता देवी कहने लगी हनुमान मैं अपने मस्तक पर सिंदूर लगा रही हूं, मगर क्यों, वो इसीलिए ताकि मैं प्रभु रामचंद्र जी को आयु का संरक्षण करने के लिए मैं सिंदूर लगा रही हूं। तो इन्होंने पूछा सिंदूर लगाने से रामचंद्र जी की आयु संरक्षित हो जाएगी निश्चित। तो हनुमान का दूसरा आइडिया चला। हनुमान पूरे सर से लेकर पैर तक पूरा सिंदूर डालकर सीधे प्रभु रामचंद्र जी के समक्ष ताथई करके नाचने लग गए। रामचंद्र जी पूछने लगे कौन सा नया फैशन है। तो हनुमान कहने लगे अभी अभी हाल ही में पता लगा है, सीता देवी जब अपने मस्तक पर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर आपकी आयु का संरक्षण इतना हो सकता है, तो मैंने सोचा कि पूरा डब्बा ही सिंदूर का खाली कर दूं तो कितना आपकी आयु बढ़ेगी। प्रभु रामचंद्र जी इतने प्रसन्न हो गए। रामचंद्र जी ने कहा मेरा भरपूर आशीर्वाद है, जो कोई व्यक्ति हनुमान के मंदिर में या हनुमान के ऊपर सिंदूर और तेल डालता है तो उनके पति का संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है। तो वैसे वो जो हनुमान जो कि रामचंद्र जी की सेवा में इतने तलीन रहते थे, तो हनुमान नाम क्यों पड़ा इसके विषय में एक इतिहास आता है। तो बताया जाता है कि जब हनुमान का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही उनका जन्म हुआ 16 साल का, तो 16 साल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। अब उनकी जो माता थी अंजना, जिनको बंदर का श्राप था, मगर उनको ये वर प्राप्त हुआ था कि तुम जब हनुमान जी को जन्म देंगे, एक महात्मा को जब जन्म देंगे, तो तुम्हारा इस श्राप से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगा। तो वो जल्दी से जन्म देकर जाना चाहती थी, उस श्राप से मुक्त होना चाहती थी। जन्म देते ही वो जब निकलने लगी तो हनुमान पूछने लगे कहाँ जा रहे हो, उनके सीधे कपड़े को पकड़ लिया। बोले मुझे जन्म तो दे दिया लेकिन मेरा भोजन की व्यवस्था नहीं की। तो इन्होंने कहा, अंजना ने कहने लगी कि जो कोई लाल कलर का फल दिखता है उसको तुम भोजन के रूप में ग्रहण कर लेना। अब हनुमान ने तो जंगल के सारे वृक्ष में फल को ढूंढा मगर कहीं मिला नहीं, लेकिन अंबर में एक फल अटक रहा था और एक लाल कलर का गोला दिख रहा था, वास्तविक में सूरज था। तो बोला वही है फल। और हनुमान सीधे दौड़ लगाए सीधे सूरज की तरफ, और सूरज की तरफ बड़े रफ्तार तेज गति से जब आ रहे थे, सूरज देख के घबरा गया कि ये बालक कौन आ रहा है मेरे पास, मेरी तो बहुत पूजा करने वाले बहुत लोग हैं लेकिन ऐसी पूजा किसी ने नहीं किया। और सीधे उनके पास आए तब उनके बगल में राहु भी आ रहा था। अब उस समय सूर्य ग्रहण होने वाला था और वो राहु उनको ग्रस्त करने वाला था। उसी समय हनुमान ने अपनी शक्ति से उस सूरज को छोटा बनाकर उन्होंने उनको सीधे मुख में डाल दिया, सूरज को खा लिया, मुंह में ही डाल दिया। अब जब मुंह में डाल दिया तो राहु देख के हताश हो गए, ही क्या मुझे वर प्राप्त हुआ है सूरज को खाने का, ये कहां से आ गया। स्वर्ग में हाहाकार मच गया, कोलाहल मच गया कि ये क्या हो रहा है। एकाएक इंद्र जो अपने सारे राजनीति के चक्कर में अपना सारा मीटिंग रच रहे थे, उसी समय एकाएक लाइट भी चला गया, अंधकार हो गया चारों दिशाओं पर। अब जब इंद्र को खबर प्राप्त हुआ कि कोई बालक आया है और सूरज को मुंह में डाल के रख दिया, तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। अब यहां पर हनुमान ने देखा कि ये राहु जैसा ये भी कुछ अजीब दिख रहा है, ये भी शायद मेरा फल है। अब राहु के पीछे लग गया, अब राहु और घबराया रहा है। अब इतने में ऐरावत हाथी में बैठकर इंद्र आ रहा है। अब जब इंद्र उनके पास आ रहा है तब उस समय हनुमान ने देखा, अरे इनको छोड़ो, वो थोड़ा सफेद सफेद फल दिख रहा है वो है ऐरावत हाथी, उसको पहले पकड़ते। अब ऐरावत हाथी और घबराने लगा। अब इतने में इंद्र ने अपने वज्र को चलाया, जिस वज्र को जब उन्होंने फेंका जिसके कारण उनकी जो टोटी जो थी, हाँ जिस चिन्ह ये टोटी के ऊपर उन्होंने वार किया और जिनके कारण वो मूर्छित होकर गिर पड़े भूमि पर, और हनुमान जी बड़े क्रोध में बैठ गए, जैसे एक बालक हट कर बैठ जाते हैं वैसे बैठ गए। अब करे तो क्या करे, सब जगह
अंधकार है। सारे देवतागण परेशान किए बालक को, करे क्या? सभी लोग कंप्लेन लेकर गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को कहने लगे तो ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को कहने लगे, ये भविष्य में प्रभु रामचंद्र जी का बहुत बड़ा सेवक बनेगा। इसलिए सभी देवी देवतागण अपने समस्त शक्तियों को इनको अर्पण करो, ताकि आपकी शक्ति को ये रामचंद्र जी की सेवा में उपयोग करेगा। और ऐसे कहकर हनुमान जी के पास गए। तो हनुमान जी के पास जाकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हें ऐसा वर देता हूं कि मेरा ब्रह्म दंड तुम पर कभी नहीं चलेगा। इसलिए ब्रह्म श्राप उन पर कभी चलता ही नहीं था हनुमान के ऊपर। फिर भी हनुमान खुश नहीं हो रहे। फिर इंद्र ने कहा, मेरा वज्र तुम पर कभी नहीं चलेगा, मैं कितना भी वज्र चलाऊं उसका प्रहार कभी होगा ही नहीं। फिर भी हनुमान कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि उनका टोटी तोड़कर रखे हैं। फिर कुबेर ने कहा, मेरा कोई अस्त्र शस्त्र तुम पर नहीं चलेगा। यमराज ने कहा, मेरा यमदंड तुम पर कभी कुछ नहीं करेगा। इस प्रकार इंद्र चंद्र इत्यादि सभी लोग अपने तमाम प्रकार की शक्तियां उन्हें दे दिए, मगर तत्पर भी हनुमान खुश नहीं, अभी भी नाराज है। तब ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से उनके मन के अंदर की क्या चलचल चल रही है उसका उन्होंने खोज किया। तब उन्हें पता लगा, ओ इन्हें तो फल चाहिए। तब उन्होंने बृहस्पति को भेजा। बृहस्पति ने कहा, मैं तुम्हें आयुर्वेद की शिक्षा देता हूं और संसार के तमाम प्रकार के बहुत ही सुंदर रसीलेदार फल आपके लिए मैं निछावर करता हूं। तब थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि फल की बात है। तो अब निवेदन किए कि अभी तो सूरज दे दो। तब हनुमान ने अपनी अहेतु की कृपा कर दी और सूरज दे दिया। वैसे हनुमान ऐसे तमाम देवी देवताओं की शक्ति को प्राप्त किया। क्योंकि उनकी तोटी टूटने के कारण, जो इस तोटी को संस्कृत में कहते हैं हनु, और जब हनु जब टूटता है तो उसको कहते हैं हनुमान, तो इसलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। और वैसे हनुमान जिन्होंने अपनी एक एक शक्ति को, हर एक शक्ति को उन्होंने रामचंद्र जी की सेवा में निछावर कर दिया। और इस प्रकार हनुमान ने अपनी महानता को बढ़ा दिया। इस प्रकार हनुमान जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के संदेश को लेकर उन्होंने सीता देवी के समक्ष पहुंचाया, कैसे इन सारे देवी देवताओं की शक्ति को ग्रहण करके। तो वर्णन आता है कि जब हनुमान जी के पास इतनी सारी शक्ति आ गई थी, तो हनुमान बचपन से ही शरारती थे। तो बताया जाता है कि हनुमान सारे साधुओं को, कितने संयमी साधु है, उनको परीक्षण करने के लिए हनुमान क्या करते थे, उनकी कुटिया के समक्ष शेर और हाथी को बांध के रख देते थे। अब शेर और हाथी तो उनके लिए खिलौना जैसा था। अब जिसके लिए सूरज फल है तो उसके लिए क्या कहा जाए। तो हुआ यूं कि जब भी साधुगण अपनी कुटिया से बाहर निकलते थे सोच क्रिया के लिए सुबह सुबह, तो पता लगता था कि अरे शेर खड़ा है सामने, तो दरवाजा तुरंत बंद कर देते थे। जाए कैसे बाहर, लघु शंका भी लगी है लेकिन बाहर शेर भी खड़ा है, तो करे तो क्या करे। और सारे साधुगण हताश हो जाते थे, तो कभी कभी वो साधु खिड़की के बाहर कूद कर चला जाता था, और जब पीछे वाले खिड़की से कूद कर जाता था तो उस पेड़ के नीचे जब बैठता था तो उसी पेड़ के ऊपर हनुमान बैठ के, यहाँ है क्या। तो बड़ा साधु को बड़ा क्रोध आता था कि ये सब हनुमान का चाल है। तो सारे साधुगण मिलकर उन्होंने हनुमान को श्राप तो दिए, लेकिन कुछ फर्क नहीं गिर रहा है, क्योंकि इतने देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तब सारे साधुगण मिलकर उन्होंने ये योजना किया कि हम एक ऐसा मंत्र फूकेंगे जिस मंत्र से हनुमान अपनी सारी शक्ति को भूल जाए, और तब उसे वो शक्ति याद आएगी जब प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में इसे लगाना है। तो वैसे हनुमान के अंदर इतनी शक्ति हुआ करता था, और इतनी शक्ति होने के कारण कोई भी उनको गुरु बनने के लिए तैयार ही नहीं थे, कोई उनको शिक्षक के रूप में ग्रहण करने को ही नहीं तैयार था। अगर कोई गुरु बन गया तो जरा सोचो क्या हाल होगा उसका। अब वो इतने शरारती थे, अब जो शरारत बच्चे को शिक्षा देने के लिए, अगर विद्यार्थी को अगर शिक्षा देने के लिए अगर गुरुकुल में अगर टीचर बैठ गए तो फिर नक्शा ही बदल जाता है। जैसे बच्चे लोगों को, जैसे जूनियर केजी इत्यादि, उन लोगों को, बच्चे लोगों को शिक्षा देने के लिए जब टीचर रहते तो पता नहीं लगता स्कूल चल रहा है क्या मार्केट चल रहा है। तो वैसे यहां पर हनुमान पहले से इतने बलशाली थे, उनको कौन से कमरे में रखेगा। तब सूर्य के पास वो गए शिक्षा लेने के लिए, तो सूर्य ने कहा मेरे पास शिक्षा लेना तो एक ही शर्त है, क्या? ये शिक्षा, ये शर्त है कि जब मैं शिक्षा दूंगा तो तुम्हें बैठना नहीं है, चलना है, चलते चलते सुनना है। और वो कैसे, मेरा रथ जब चलेगा तो मेरा रथ के साथ साथ चलना है, और चलना तो है वो भी कैसे, उल्टा, क्योंकि उल्टा चलने से ज्यादा शक्ति खर्च होएगा। और वैसे हनुमान सहमत हो गए, साथ में ये भी शर्त रखा एक ही बार बोलूंगा दोबारा नहीं बोलूंगा, वो भी सहमत। तो हनुमान श्रुतिधर थे, एक ही बार में उन्होंने चार वेद शिक्षा को ग्रहण के रूप में ग्रहण कर लिया और बड़े तेजस्वी और बड़े विद्वान बन गए कुछ ही दिनों में। और जब हनुमान ने सूर्यदेव को पूछा, हे गुरुवर आपने तो मुझे शिक्षा तो दे दी, आप गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दिया जाए। वो उस समय ऐसे जैसे आज के तारीख में तथाकथित फीस हुआ करता है, वो नहीं होता है धन राशि के द्वारा। आजकल के तो टीचर लोग घंटे भर का शिक्षा लेने के लिए भी फीस लेते हैं, लेकिन यहां पर गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने पूछा क्या दूं। तब इन्होंने कहा अगर तुम्हें गुरु दक्षिणा देना है तो सुग्रीव के, जो कि सुग्रीव सूर्य का पुत्र था, मेरे पुत्र सुग्रीव का तुम निरंतर सेवक के रूप में उनके ही साथ रहना। और हनुमान ने कहा जो आज्ञा। अब हनुमान ने यह नहीं पूछा कब तक, हमें कोई सेवा दिया जाए तो हम यही पूछेंगे कब तक करना है, टाइम क्या है, कुछ इसका लिमिटेशन तो होगा नहीं। हनुमान ने कहा जो आ गया, और जीवन पर्यंत तक हनुमान सुग्रीव के दास बन के रहे, ये उनका था गुरु दक्षिणा। और इसीलिए हनुमान सुग्रीव के साथ निरंतर उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। जब वाली ने सुग्रीव के पत्नी को जब हड़प लिया तो सुग्रीव जंगलों में धर धर भटकता था, तब एकाएक हनुमान का मुलाकात हुआ प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण से। तो उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण को लेकर आए सुग्रीव से भेंट कराने के लिए। तब उसी समय सुग्रीव ने देखा कि ये मानव का राजा राम, बंदरों का राजा सुग्रीव यानी कि मैं, तो हम दोनों बराबरी के हुए। तो उन्होंने एक आसन उनके लिए डाला, दूसरा आसन अपने लिए, और बैठ गए और लक्ष्मण को भूल गया। और रामचंद्र जी को ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने मुझे आदर दिया लेकिन लक्ष्मण को नहीं दिया। और हुआ यूं, सुग्रीव हनुमान ने देखा कि लक्ष्मण को आसन नहीं मिला है, तो हनुमान ने रामचंद्र जी से भी बढ़िया आसन उन्होंने उनका तैयार किया, बड़े खुशबूदार, और लक्ष्मण को भेंट किया। रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए। अब जब सुग्रीव ने पूछा मुझे वाली को वध करना है कि आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि मेरी जो पत्नी है उसको मेरे भाई वाली ने हड़प लिया है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसे वापस अपने पास लूं, मगर तुम्हारी क्या समस्या है, रामचंद्र जी को पूछे। तो रामचंद्र जी कहने लगे जो त्वार गति वो मुआर गति, जो तुम्हारी जो समस्या हो मेरी, मेरा भी एक वाली जैसा रावण जैसा कोई भाई है, वो मेरे पत्नी को लेकर गया, तो मैं तुम्हें सहयोग करूंगा, मुझे दोनों के बीच का एग्रीमेंट हो गया तैयार। अब सुग्रीव ने कहा लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि आप धनुर्धर हो, बहुत अच्छे धनुष चलाने में बड़े निपुण हो, मुझे कैसे खबर होगा, मुझे कुछ डेमो करके बताओ। तो रामचंद्र जी ने अपने धनुष बाण को डेमो करते हुए उन्होंने ऐसे बाण को चलाया कि बाण पहले ऊपर के लोक में गए, फिर नीचे के लोक में गए, फिर वो बाण जितने भी पेड़ थे वो सात पेड़ को काट दिया और वही बाण वापस रामचंद्र जी के मान में आकर बैठ गया। सुग्रीव देखकर खुश हो गया, बोला वाकई मेरी रक्षा हो सकती है, मैं पिटाई नहीं खाऊंगा। और हुआ क्या, सुग्रीव गया सीधे वाली के पास, वाली बाहर निकल, तुम्हारा काल आ गया है। वाली विचार करने लगा, कल तक तो मुझसे डरकर भाग रहा था, आज क्या हो गया। वाली आया अपना गधा लेकर, और जब आए उनके पास मारने के लिए तो सुग्रीव सोच रहा अभी बाण चलेगा, अभी बाण चलेगा, बाण चल ही नहीं रहा है और यहां पर पिटाई पे पिटाई हो रहा है, और इतना पिटाई खा रहा है कि सुग्रीव तो अभी बस मरने ही वाला था। और सुग्रीव विचार कर रहा है कि ये हो क्या रहा है, रामचंद्र जी क्या भूल गए क्या। अब उन्होंने जब उसको मारने ही वाले थे, एकाएक उनके हाथ से छूट गया सुग्रीव, और क्योंकि बंदर था थोड़ा सा मौका मिला, एक ही पेड़ पे छलांग लगा, दूसरे पेड़ पे छलांग लगाकर ऐसे जान बचाकर भाग गया। पहले आके रामचंद्र जी को प्रश्न ये किया, मुझे बचाया क्यों नहीं, क्या कर क्या रहे हो। तब रामचंद्र जी ने कहा, मुझे क्षमा करना, दोनों जन एक जैसे ही दिख रहे हैं, और वो भी क्या, मैं बंदरों के संपर्क में अभी अभी आया हूं तो मुझे भेद करने को थोड़ा समय लग रहा है। जैसे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु जी आपके इधर सब ब्रह्मचारी एक ही जैसे दिखते हैं, सब शिव है, सब एक ही सैंपल है, कोई भेद नहीं दिख रहा है। और यहां पर रामचंद्र जी कह रहे हैं, मुझे दोनों एक ही सैंपल दिख रहा है। अब सुग्रीव कहने लगा, अब करे क्या, जबकि आचार्य कहते हैं सुग्रीव और वाली में भेद करना कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ी आसानी से हो जाता था, मगर तत्पर भी यहां पर रामचंद्र जी ने जानबूझकर नहीं मारा, क्योंकि रामचंद्र जी ने देखा सुग्रीव ने लक्ष्मण के प्रति अपराध किया है, उनको ठीक से आदर सम्मान नहीं दिया, और उनको निरादर करने के कारण वो, क्योंकि लक्ष्मण जो हमारे आदि गुरु हैं, गुरु के प्रति अपराध होने के कारण उनको पहले मैं पिटाई खिलाऊंगा। और इसलिए सुग्रीव को खूब पिटाई खिलाया, क्योंकि सुग्रीव जंगल में भटकता हुआ व्यक्ति था, और वालियों क्योंकि राजा के पोस्ट में बैठा था इसलिए पूरे स्वर्ण आभूषण से सजे ढजे थे, भेद करने में कोई भी मुश्किल नहीं था, बड़े आसानी से पता लग रहा था। मगर राम ने लक्ष्मण के अपराध को शमन करने के लिए इस प्रकार उनको पिटाई खिलाया। और जब कहा कि अब आगे करे क्या, तो राम ने कहा, लक्ष्मण तुम एक लताओं की माला उनके गले में डालो। तब उन्होंने उस लताओं की माला जब सुग्रीव के गले में जब डाला, तब पता लगा कि जैसे कि मानो ब्राह्मण दीक्षा हो गया, और लक्ष्मण ने उनको शिष्य के रूप में ग्रहण कर लिया, शिष्य के सारे अपराध क्षमा हो गए। तब जाकर राम ने सुग्रीव की रक्षा की। अब जब सुग्रीव का तो जो वादा था पूरा हो गया, फिर सुग्रीव के वादे को अब सुग्रीव को अब रामचंद्र जी के प्रति मदद करना था, तो बहुत सुंदर ढंग से वर्णन आता है कि सुग्रीव अपनी सारी वानर सेना के साथ लग गए थे प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में, और प्रभु रामचंद्र जी के पास कितने वानर सेना थे इनकी गणना वाल्मीकि मुनि बताते हैं, और ऐसा इनकी संख्या है कि आज के तारीख में कोई भी गणित इनके सामने, सब गणित फेल है। तो अगर कोई कहता है कि भौतिक गणित में मैं बहुत निपुण हूं, तो ये जरा बताइए कि रामचंद्र जी के पास बंदर कितने थे, उस बंदरों में जो संख्या में शून्य कितना था। तो बताया जाता है, वाल्मीकि कहते हैं 1,00,000,000,000 एक शंकु के बराबर है, 1,00,000,000 एक महाशंकु के बराबर है, 100,000 महाशंकु एक वृंद के बराबर हैं और 100,000 वृंद एक पद्म के बराबर हैं और 100,000 पद्म एक महापद्म के बराबर हैं और 100,000 महापद्म एक खर्व के बराबर हैं। अभी तक हुआ नहीं। 100,000 खर्व एक महाखर्व के बराबर है और 100,000 महाखर्व एक समुद्र के बराबर है और 100,000 समुद्र एक ओघ के बराबर है और 100,000 ओघ एक महाओघ के बराबर है और प्रभु रामचंद्र जी के पास 100 करोड़ महाओघ बंदर थे। तो कितना शून्य हुआ। और प्रभु रामचंद्र जी सभी बंदरों को देखते थे, सबका काउंसलिंग होता था, रामचंद्र जी सबका काउंसलिंग लेते थे सभी बंदरों का और सारे बंदरों को संरक्षण के रूप में सबको पालन पोषण करते थे। आज के तारीख में कोई अगर अपने आप को भगवान कहता है तो उनको केवल 5 बंदर संभाल के बताओ तो हम जानेंगे आप भगवान हो। तो वैसे तथाकथित जो कि गणित जो आज के तारीख का है वो वैदिक शास्त्र के सामने फेल है। तो इतने सारे वानर सेना लग गए थे प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में, मगर प्रश्न उठा कि लंका जाएगा कौन। लंका 100 योजन लंबा। तो आज के कई लोग आज भी लोग सोचते हैं कि वो जो रावण की लंका मतलब है श्रीलंका। नहीं, गलत। ये श्रीलंका तो यहां से भारत से केवल 16 किलोमीटर लंबा है, केवल 45 मिनट में बोट के द्वारा पार्क लगा सकते हो, केवल 45 मिनट्स में। और वैसे वो जो रावण की जो लंका थी, सोने की लंका, वो 100 योजन लंबा था। 100 योजन यानी कि क्या, 1 योजन यानी कि 8 माइल और 1 माइल यानी कि 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.25 किलोमीटर। तो लगभग 1200 किलोमीटर उन्होंने एक छलांग में पार लगाया। तो लॉन्ग जंप में इनका नाम आना चाहिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड, खाली एक ही छलांग में। और हनुमान ने वो कर दिखाया। तो हनुमान को अपनी शक्ति का जो याददाश्त था वो जामवन ने उनको पुनः दिलाया। तो बड़े विस्तार से लेकिन संक्षेप में वर्णन है कि इस प्रकार उन्होंने उनको जब अपनी याददाश्त दिला दी तो हनुमान ने जब अब विचार किया कि अब मुझे लंका की ओर छलांग लगाना है, तब उस समय उन्होंने जोर से राम का नाम लेकर उन्होंने छलांग लगाया। तो बताया जाता है कि हनुमान ने यहां पर र कहा और म उसका हुआ लंका में पहुंचकर। तो केवल राम बोलने मात्र से वो लंका पहुंच गया, क्योंकि गरुड़ ने भी उनको आशीर्वाद दिया था कि मुझसे भी ज्यादा तेज रफ्तार गति तुम्हें प्राप्त होगा, और उनकी गति के सामने किसी की गति नहीं थी। और वैसे हनुमान जिन्होंने केवल राम का नाम लेकर जब छलांग लगाए तो तरह तरह के असुरगण उनके समक्ष आए और तरह तरह की स्पर्धा हुई और तरह तरह के संकटों को उन्होंने झेल कर आगे बढ़ा। तो इस असुरों के साथ हनुमान ने कैसे अपनी समस्याओं को झेला, यह वास्तविक में शिक्षा एक साधक भक्त के लिए है। तो उस असुर के साथ तुलना किया गया है हमारे भक्ति मार्ग में अलग अलग प्रकार के रुकावट और संकट। तो वो क्या है, तो बताया जाता है कि जब हनुमान ने जब छलांग लगाया तो सबसे पहला एक सोने का पर्वत आया, मैनाक पर्वत। और जब मैनाक पर्वत ऊपर आया और उन्होंने कहा कृपा करके आप मुझ पर विश्राम करो, यहीं पर ही विश्राम करो, आपके पिता इंद्र देव ने, जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, आपके पिता इंद्र देव ने मेरी रक्षा की थी, आपके पिता वायु देव ने मेरी रक्षा की थी इंद्र के द्वारा, इसलिए मैं आपको कुछ सेवा करना चाहता हूं। और क्योंकि हनुमान जो थे वो कौन थे, वायु पुत्र थे। अब हनुमान को उन्होंने आसन दिया विश्राम करने के लिए, मगर हनुमान ने कहा नहीं, समय बहुत कम है, मुझे आगे जाना है, मेरा आंदोलन कुछ और है। उन्होंने सोने के पर्वत स्पर्श किया, हाथ जोड़ा, निकल गए। तो सबसे पहला एक भक्त को चुनौती आती है, भक्ति करते करते तो शुरुआत पे तो बड़े रफ्तार में रहता है गाड़ी और फुल स्पीड रहती है, ऐसे लगता है कि बस आज ही के दिन उसे कृष्ण उसके समक्ष प्रकट होने वाला है। और कभी कभी तो ऐसे भी कहते कि जब करते करते मेरे आंखों के सामने एक लाइट चमक रहा है, तो इतना उसको उस भक्ति में आवेश हो जाता है। मगर होता क्या है, फिर धीरे धीरे आलसपन पकड़ता है, फिर धीरे धीरे उनको नींद आने लगती है। अब नींद की समस्या शुरू होती है, ये भक्तों का सबसे पहला चुनौती है। थोड़ा सा आराम कर लिया जाए तो क्या फर्क गिरता है, इतना तो तपस्या किया है, थोड़ा आराम कर लिया जाए। और वही जो थोड़ा आराम, उसके लिए बड़ा आराम बन जाता है, और जिसमें उसका समय काफी चला जाता है, और फिर सोचता है वो क्या हो रहा है। तो हनुमान ने यहां पर थोड़ा भी आराम नहीं किया। तो शुरुआत में तो हम उड़ जाते हैं, 4:30 बजे मंगल आरती के लिए तो तैयार हो जाते हैं, मगर जैसे समय समय बीतता है, थोड़ा 1 मिनट और सोता हूं, और 1 मिनट सोने लगता है, फिर 15 मिनट होता है, फिर आधा घंटा होता है, फिर मंगल आरती छूट जाता है, फिर सूर्य उदय के बाद उठना शुरू करता है, फिर कहने लगता है कि प्रभु जी अभी पहले जैसा मैं उठ नहीं पाता हूं, पहले तो काफी उठता था, अभी अचानक क्या हो गया। अचानक यह हुआ कि हमने सोने के पर्वत पर बैठ गए, ये हमारी समस्या है। तो जब सोने के पर्वत में बैठ गए तो हमारा जो लक्ष्य वो छूट जाएगा। मगर हनुमान बैठे नहीं, हनुमान ने कहा मेरा लक्ष्य बहुत लंबा है, मुझे जाना है आगे, इसलिए क्षमा करिए, निकल पड़े। तो पहला चुनौती यह है कि कैसे हम अपनी साधना को सेकेंडरी कैटेगरी में डाल देते हैं। तो कभी कभी हमारा बाहर लोगों से संगति होने के कारण, बाहर वाले को भी अगर हम गलती से कहते हैं हरे कृष्णा जप करना चाहिए, तो वो तो फिर अपना प्रवचन शुरू करता है, अरे ये सब बकवास है, ये तो सब बूढ़े लोग करते हैं, अभी तो जीवन का सब करियर देखना है, बहुत कुछ काम करना है, फिर जब कुछ काम धंधा नहीं होगा तो झोली लेकर ही बैठना है, इतना जल्दी क्या है। और तरह तरह का उन लोग अड़ोस पड़ोस वाले अपने अपने सुझाव देते हैं, तो सुन सुन कर सुन को लगता है कि हाँ ये कुछ गलत भी नहीं कह रहा है, सही तो बोल रहा है। और उसी में वो उसके बात में आकर भगवान के जप के प्रति भी उसकी श्रद्धा कम हो जाती है। तो पहले 16 होता है, फिर 1 भी नहीं होता है। तो कभी कभी घर वाले भी ताना मारने लगते हैं, जब से तुमने ये घर में झोली लाया तब से घर में परेशानी शुरू हो गया, बंद करो ये। और वो बेचारा अकेला है, करे तो क्या करे, कोई सपोर्ट में है ही नहीं। और क्योंकि उनको और भक्तों का संगति नहीं होता है तो वो भी बंद कर देता है, और इसीलिए उसे लगता है कि ये जप वप में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कभी कभी भक्त लोग जब, क्योंकि जप जो होता है वो जप करने के समय पर वो व्यक्ति और कृष्ण उसके बीच में तीसरा कोई नहीं है, गुरु कृष्ण और वो भक्त, इन तीनों के बीच में और कोई है ही नहीं, इन तीनों को ही पता है कि वो हो क्या रहा है, झोली के अंदर माला घूम रहा है नहीं घूम रहा है उसी को ही पता है, बाकी सब लोग झोली लेकर तो घूम रहे। एक भक्त यहीं पर ही हाल ही में, कुछ 2 महीना पहले की बात है, एक भक्त यहां पर आया था और काफी, दो भक्त के बीच में काफी चर्चा हो रहा था, काफी जोर जोर से चर्चा हो रहा था। तो बाहर जाते हुए तो मैंने देखा एकाएक, मैंने कहा क्या हुआ क्या, तो ये कहें कितना क्यों चिल्ला रहे हो, बोला प्रभु जी ये देखो ये क्या कर रहा है, क्या हुआ, ये रोज झोली लेकर आता है यहाँ पर आकर खिचड़ी खाता है। नला अच्छी बात है ना, मतलब झोली तो लाता है लेकिन उसके अंदर जपमाला नहीं है, खाली है झोली। शायद वो भक्त इधर ही किधर हो गया जो झगड़ा उसके साथ कर रहा था। तो वो कह रहा था कि ये झोली तो लाता है लेकिन इस झोली के अंदर माला नहीं है, तो और साथ में करता क्या है, झोली हाथ में डाल के ऐसा कहता हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और उसने देखा एक दिन पकड़ के देखा बाला ही दिया। तो ये जो अंदर की जो माला है वो अंदर की माला, वो अंदर के परमात्मा ही जानते कि हो क्या रहा है, माला हो रहा है कि नींद हो रहा है। तो वैसे जो हमारा जो साधना है ये साधना वही व्यक्ति कर पाएगा अच्छी तरह जिसके अंदर कृष्ण को प्राप्त करने की अटूट रुचि है या लगन है, वही व्यक्ति एक सिंसियर भक्त ही साधना को ठीक से कर पाएगा। अन्यथा हमारे अंदर धीरे धीरे ऐसी भावना उत्पन्न होने लगती है कि ठीक है ये साधना तो ठीक है, माला वगैरह ठीक है, लेकिन इसमें कोई वावा नहीं होता। वावा किस में होता है, जब बड़ा अच्छा सेवा करे, क्योंकि सेवा का ग्रॉस रिजल्ट दिखता है, कुछ स्थूल रूप में प्रकट दिखता है कि मैंने इतना सेवा किया, प्रवचन देंगे हाँ बढ़िया क्लास है। तो कुछ कार्य से, कुछ सेवा करने से जो परिणाम है वो बढ़िया दिखता है, तब वो सोचने लगता है माला से सेवा श्रेष्ठ है, और वो फिर माला को 16 माला भी उसका रह जाता है, और फिर वो सेवा में ज्यादा इम्पोर्ट ज्यादा महत्व देता है, और जिसके कारण उनका माला में रुचि खत्म हो जाता है। जबकि माला अच्छा करने से हमारा सेवा अच्छा होगा। तो सेवा जो है, सेवा हमारे जप के पीछे आधारित है। तो वैसे हमारा जो साधना है उस साधना को व्यक्ति को ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, उनके प्रति उसकी श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। तो वैसे यहां पर हनुमान ने, उन्होंने स्पर्श किया, निकल पड़े और कहा कि नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं थोड़ा सा यहां पर आराम करूंगा तो मेरा राम का जो संदेश है वो पहुंचा नहीं पाऊंगा, राम के आंदोलन में रुकावट आ जाएगी। तब हनुमान जी आगे निकले, आगे निकले तो दूसरा उनके समक्ष असुर आ गया जिनका नाम है सुरसा। तो सुरसा प्रकट हो गई, सुरसा कहने लगी तुम्हें मेरे मुख में जाना होगा, मैं तुम्हें खाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुआ है कि जो कोई व्यक्ति यहां से आएगा वो मेरे मुख में जाएगा, तो मुझे वरदान प्राप्त हुआ है तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तो हनुमान ने देखा, तो हनुमान ने योजना किया, चलो इसके मुख से ही बड़ा हो जाते हैं। तो हनुमान ने अपने आप को 30 योजन में बड़ा कर दिया, तो इन्होंने अपने आप को 50 कर दिया, तो हनुमान ने अपने आप को 60 योजन बड़ा किया, तो इन्होंने अपने आप को 80 योजन बड़ा कर दिया, तो हनुमान ने 90 योजन बढ़ गए, और इन्होंने अपने आप को 100 योजन बड़ा किया, तो हनुमान इतने छोटे बन गए, उनके मुख में गए, उनके पेट में जाकर वापस बाहर आ गए, क्या मैंने सारा वर पूरा कर दिया। और इस तरह हनुमान ने कहा कि अब ब्रह्मा जी का वर भी पूरा हो गया, अब आपको मुझे जाने के लिए आगे अनुमति देना होगा। तो सुरसा कहने लगी बहुत बुद्धिमान निकले, ठीक है जा सकते हो। तो सुरसा ने उसे छोड़ दिया, कुछ कर ही नहीं सकती है। तो यह हमारा भक्ति का दूसरा चुनौती है, जब भक्ति में लगते हैं, क्योंकि भक्ति में जब लगते हैं एकाएक सब लग रहे हैं, सब साथ में हैं, तब होता क्या है, यहां पर सुरसा और हनुमान के बीच में चल क्या रहा था, स्पर्धा, स्पर्धा चल रहा था कि कौन किससे बढ़कर है। और यहां पर भक्ति में जब हम लगते हैं साधक भक्तगण, तब उनका दूसरे भक्त के साथ स्पर्धा शुरू होता है। और स्पर्धा खास करके किसके साथ होता है, जब जो दो व्यक्ति एक ही फील्ड में है। अगर कोई किचन में अच्छा रसोई बना रहा है तो कीर्तन करने वाले के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोले बढ़िया, हाँ तुम भी बढ़िया कीर्तन कर रहे हो। बोले हम बढ़िया कुकिंग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब दो कीर्तन व्यक्ति एक साथ आते तब प्रॉब्लम शुरू होता है। कीर्तन कौन गाएगा और अच्छा कौन गाता है? तो दो वक्ता जब एक साथ, जब दो प्रवचक लोग आते हैं तब स्पर्धा शुरू होता है कौन किसका प्रवचन अच्छा है। और उस स्पर्धा में व्यक्ति अपने उद्देश्य को भूल जाता है। यहां पर हनुमान ने इस समस्या को कैसे झेला? अपने आप को छोटा बनाकर। तो जब हमारा दूसरे भक्त के जब स्पर्धा शुरू होता है, हु इज द सुप्रीम, आप हो क्या मैं, अब इस स्पर्धा में व्यक्ति को अगर विजेता प्राप्त करना है तो अपने आप को छोटा से छोटा बना लो, जैसे हनुमान ने किया। तो वैसे विनम्रता, वैसी नम्रता अगर हमारे अंदर प्रकट होती है तो हम बड़े आसानी से इस भव सागर को लांग सकते हैं। तो करना क्या है? अपने आप को सबसे छोटा समझना है। तो उस प्रकार जब हम दूसरे भक्तों के साथ रहेंगे तो दूसरे भक्तों के साथ का जो संबंध है वो भी उसका अच्छी तरह बना रहेगा। तो खास कर लोगों का ये प्रश्न रहता है कि ठीक है हम छोटा बनो, लेकिन बाहर अगर ऐसे रहेंगे, नम्र रहो, अगर बाहर भी रहेंगे तो विरार लोकल ट्रेन पकड़ेंगे कैसे? सब लोग धक्का देख के चढ़ जाएंगे तो करें क्या? तो सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि भक्तों के बीच में उसे बिल्ली रहकर रहना चाहिए, बाहर जब जाते तो उसे शेर की तरह रहना चाहिए। मगर हमारा ठीक विपरीत होता है, बाहर हम बिल्ली हो जाते हैं। जब भी कर रहे ठीक है, कभी तो करोगे, करते रहो, लेकिन जब भक्तों के बीच में आते तो तुम ऐसे नहीं कर सकते। तो कभी कभी डांटते भी हो तो भगवान के नाम से हरि बोल, तो उसमें भी उसका भगवान का ही डांट निकलता है। तो वैसे भक्तों के बीच का जो स्पर्धा है उसके उसे हटना है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य क्या है इस पर जोर देना है। हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एकमात्र यह है प्रभु रामचंद्र जी के आंदोलन को पूरा करना है। यह स्पर्धा से थोड़ी, इस स्पर्धा को उद्देश्य रखकर मैं यहां पर थोड़ी आया, मेरा उद्देश्य कुछ और था। तब उस संबंध ज्ञान को व्यक्ति जब जगाएगा तो इससे वो व्यक्ति छूट सकता है। हनुमान ने कहा मेरा उद्देश्य इसके साथ स्पर्धा नहीं है, मुझे आगे जाना है, और ऐसे सोचकर हनुमान आगे गए। अब जब आगे गए तो तीसरा असुर आया और जिनका नाम था सिंधी का। इस असुर ने हनुमान की परछाई को बड़े कस के पकड़ लिया और कस के पकड़ने के कारण हनुमान की जो गति थी वो रुक गई। हनुमान कोशिश कर रहे लेकिन गति आगे जा ही नहीं रहा है क्योंकि इस असुर ने उसके गति को ही पकड़ लिया। क्योंकि इनके पास ये वर था कि तुम किसी की परछाई को पकड़ो वो आगे जा ही नहीं सकता। हनुमान जी ने देख लिया मेरे प्रभु रामचंद्र जी के आंदोलन के गति में इन्होंने रुकावट दिया है। तो हनुमान सीधे उनके मुख में गए और उनके हृदय को चूर चूर कर दिया और इस तरह उन्होंने इसका विनाश कर आगे गए। तो तीसरा क्या है? तीसरा है हमारे हृदय की ईर्ष्या। तो जब हम भक्ति में लगते हैं स्पर्धा से भी मुक्त होते हैं फिर धीरे धीरे ईर्ष्या करने लगते हैं और भक्त के अंदर के गुणों को देखकर, इनके अंदर इतना गुण है। तो जब किसी के अंदर अच्छे गुण को देखते हैं तो इनके अंदर ईर्ष्या होती है, उनके अंदर ही क्यों, मेरे अंदर क्यों नहीं, और वो ईर्ष्या उसे भक्ति में रोक देता है, उसकी गति को ही रोक देता है। क्योंकि हमारे गति को रुकाने वाला सबसे बड़ा वो है अपराध, और भक्त के प्रति हम ईर्ष्या की, यानी कि केवल दूसरे भक्त के अंदर केवल अवगुणों को देखना, इसके अंदर क्या अवगुण है, केवल उसी गुणों को देखने के लिए वो लालायित रहता है, या केवल 24 घंटा केवल देखता है, अपना नजर घुमाता है, ओ इसके अंदर ये प्रॉब्लम, ओ इसके अंदर ये है। तो शुरुआत में जब भक्त के संग में आते तो उन्हें लगता है ओ सब महान है, फिर धीरे धीरे अभी पता लगा इसके अंदर ये समस्या है, मुझे पता नहीं था। तो कभी दूसरा भक्त कहता है बहुत अच्छा भक्त है, नहीं नहीं इसका परम गुह्य ज्ञान मेरे पास है, तुम जानते नहीं हो। और वो उसका फिर बैकग्राउंड का पूरा जन्म कुंडली निकालता है कि ऐसे था ऐसे था। तो एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगे प्रभुपाद मैं इसको झेल नहीं सकता हूं, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो प्रभुपाद कहने लगे मैं तुम्हें जैसा झेल रहा हूं वैसे तुम उनको झेलो। तो एक व्यक्ति आकर कहने लगा प्रभुपाद ये भक्त होकर ऐसा कर रहा है, और ये भक्त है? तो प्रभुपाद कहने लगे इस्कॉन में कोई भी भक्त नहीं है मेरे अलावा, मैं अकेला भक्त हूं। तो हम सब भक्ति में लगे हैं, भक्त नहीं है मगर भक्त बनने का प्रयास है। तो सरस्वती ठाकुर बताते कि ये मंदिर यानी कि इस्कॉन, एक तब उस समय तो इस्कॉन नहीं था, उस समय गौड़िया मठ था। तो ये जो संस्था जो आत्मा का ज्ञान देता है, इस मंदिर को यानी कि इस्कॉन को हॉस्पिटल के समान कहा गया है, और उस हॉस्पिटल में मेन डॉक्टर प्रभुपाद है, और जितने उनके जो रेसिडेंशियल डिवोटी है जो ब्रह्मचारी है वो सब कंपाउंडर है, और जितने बाहर के आते हो पार्ट टाइम जॉब करने वाले हैं। तो जरूरी नहीं, बीमारी कभी भी किसी को भी आ सकती है। तो सभी जो व्यक्ति हॉस्पिटल में आता है कौन आता है? बीमार आदमी आता है। मंदिर में कौन आएगा? जो व्यक्ति टूटियों से भरा है वही व्यक्ति तो आएगा। तो वैसे टूटियां सबके अंदर है, लेकिन उस टूटियों को देखकर केवल उसी पर चोट मारते रहना, ये कौवे का समाज है। दो प्रकार का समाज होता है, एक होता है कौवे का समाज, दूसरा होता है डॉल्फिन। जब कौवा एक घायल होता है तो सभी कौवे उस पर चोच मार मार कर उसे तो बस खत्म कर देते हैं, लेकिन एक डॉल्फिन जब डॉल्फिन को ऊपर का ऑक्सीजन लेने की बहुत सख्त आवश्यकता पड़ती है तो इसीलिए डॉल्फिन जब डूबने आता है, वो जब ऊपर नहीं आ पाता है, तो बाकी जितने डॉल्फिन जो मछलियां है वो उसको अपने मुख से ऊपर की ओर धकेलते हैं ताकि वो गिरे नहीं। कितना कॉपरेशन है, और इस प्रकार वो उसको सहयोग करता है। ये भक्तों का समाज है। तो एक भक्त थोड़ा सा घायल हुआ है तो बस उसमें लगे चोच मारने, तो फिर वो भक्तों का समाज नहीं कहा गया, तो उसे सहयोग करना चाहिए। वैसे ईर्ष्या नामक जो वस्तु है जो हमारे अंदर है उसको हमें जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। तो अगर किसी के प्रति ईर्ष्या है तो कैसे सुलझाए, उसके गुणों के विषय में सुनो कि वो कितना महान है। तो हमारे अंदर वो ईर्ष्या नामक चीज खत्म हो जाएगी जब हम किसी के गुणों के विषय में सुनेंगे। तब जैसे एक बार एक समय की बात थी कि एक बार एक व्यक्ति के पास एक गधा था, तो गधे को देख देख के परेशान था, तो सोचा चलो गधे को बेच ही देता हूं। तो गया मार्केट में गधा को बेचने, तो 60 रुपए में गधा ले लो, 60 रुपए में गधा ले लो, तो बेच दिया 60 रुपए में गधा बेच दिया। अब जब वापस आ रहा था तो गधे के साथ आ रहा था, तो पड़ोसी ने पूछा भैया गधे को बेचने गए आप वापस ला रहे हो? हाँ मैं बेचा तो सही 60 में, लेकिन 80 में खरीद के भी लाया। ला रहे गधा कौन है ये क्या आप हो? तो कहने लगा वो हुआ यूं कि मैंने 60 में तो बेच दिया, लेकिन बेचने के बाद जिस बंदा को बेचा वो बंदा मेरे गधे की ऐसी स्तुति गाए, क्या इनकी बोली है लाजवाब, क्या इनकी टांग है क्या बोले नहीं, और इनके पीठ तो इतनी मजबूत है कि कितना भी वजन ले सकता है। ऐसे सुन सुन के मुझे लगा कि मैं बेचकर बहुत गलती किया है, तो उन्होंने कहा मेरा घड़ा वापस दो, लो तुम्हारा 60 रुपया। बोला नहीं, अभी खरीदना है तो 80 में खरीदो। और वो बेचारा पछताने लगा, मैं 60 में बेच के गलती किया और 80 में खरीद के ला दिया, मेरा घड़ा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि उसके गुणों के विषय में सुना। तो जब किसी के गुणों के विषय में सुनते हैं, उसके प्रति जो ईर्ष्या नामक जो चीज है खत्म हो जाती है। और इस प्रकार हमें उस ईर्ष्या को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। सभी हम वस्तु को कृष्ण भावनामृत में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या नहीं। उसे तो केवल एक ही है उपाय, उखाड़ कर फेंक दो। श्री प्रभुपाद इस ईर्ष्या को उपयोग करने के लिए बहुत अच्छा तरकीब बताते हैं, और वो यह है कि अपनी ईर्ष्या को उन व्यक्तियों के ऊपर उपयोग करो जो भगवान को निराकार कहता है। तो मायावादियों के ऊपर हम अपने ईर्ष्या को उपयोग कर सकते हैं, सिद्धांत के प्रति या व्यक्ति के प्रति नहीं। तो इस प्रकार उस सिद्धांत को हम खंडन कर सकते ईर्ष्या के बल से, तो हमारा ईर्ष्या कृष्ण की सेवा में लग जाएगा। और इस तरह हनुमान वो आगे निकले। अब जब हनुमान आगे निकले तो सीधे पहुंच गए त्रिकुट पर्वत पर। अब पहुंच गए श्री रावण की लंका में, वो पहुंच गए। अब पहुंच कर अब देख रहे अब जाना कहां है, क्योंकि बहुत सारे असुर हैं। तो वर्णन आता है कि हनुमान जब उस स्थान पर पहुंचे त्रिकुट पर्वत पर, तब उनके शरीर में जो फूल था वो अभी भी ताजा दिख रहा था। वो जो फूल जो उन्होंने महेंद्र पर्वत को लेकर जब छलांग लगाए थे, जो शुरुआत उन्होंने किया रा बोलकर, जिस पर्वत से उन्होंने छलांग लगा रहे थे, उसी समय देवतागण फूल की वर्षा उन पर गिरा है, और वही फूल यहां पर भी त्रिकुट पर्वत पर यथा रूप में था। उनका फूल में कोई बदलाव नहीं था। हम केवल तिलक लगा के यहां से मीरा रोड स्टेशन जाते तो तिलक भी मिट जाता है, मगर यहां पर 1200 किलोमीटर लगभग उससे ज्यादा, उतना छलांग लगाने के बाद भी उनके शरीर में वैसे ही ताजगी फूल, और इतना ही नहीं बल्कि और फूल बरस रहे थे। हनुमान और तेजस्वी, यौवन और धैर्य दिखाई दे रहा था उनकी आंखों में, और हिम्मत दिखाई दे रहा था। और ये हनुमान का वर्णन आता है। क्यों? क्योंकि हनुमान ने अपने मन और बुद्धि को राम की सेवा में लगा के रखे थे। तो जिसने अपने मन और बुद्धि को राम की सेवा में लगा के रखे हैं, तो बुढ़ापे का प्रश्न ही नहीं। तो बुढ़ापा कब आता है, किसको आता है? जब वो व्यक्ति भौतिक विषयों के प्रति चिंतन करता है। श्री प्रभुपाद एक व्यक्ति के पास, विदेश में एक व्यक्ति था जो गार्डन को देख रहे थे, गार्डन की रखवाली कर रहे थे। तो उनका 65 साल था, 65। तो प्रभुपाद उनके पास गए और उनके पास जाकर कहे, तुम्हारे दांत है? तो बोले, नहीं, मेरे सारे दांत टूट गए। उनके सारे दांत टूट गए थे। प्रभुपाद कहने लगे, मैं 75 का हूं, अभी भी दांत है। आई एम 75, आई गॉट ऑल टूथ। व्हाई यू नो? आपको पता है क्यों? तो इन्होंने कहा, नहीं, हो सकता है कि मैंने स्वीट ज्यादा खाया हो। प्रभुपाद कहने लगे, मैंने भी स्वीट बहुत खाया, लेकिन मैं ढंग का स्वीट खाया हूं, कृष्ण को अर्पण कर कर। तब प्रभुपाद कहने लगे, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के विधि विधान में लगे हुए हैं, उस व्यक्ति को बुढ़ापा भले ही बारी दृष्टिकोण से आएगा, मगर बुढ़ापा उसे ग्रस्त नहीं करेगा। ऐसे उम्र में भी प्रभुपाद वो यौवन थे, वो तत्पर भी उनके अंदर पूरा जोश था भगवान कृष्ण की सेवा करने का। वृंदावन मंदिर में, जो कि कृष्ण बलराम मंदिर में, एक समय एक भक्त को एक अहम आ गया, क्योंकि मंदिर चल रहा है, क्योंकि मैं डोनेशन लेकर आ रहा हूं। प्रभुपाद जान गए कुछ इनके अंदर प्रॉब्लम है। तो आधी रात को प्रभुपाद ने उनको बुलाया। प्रभुपाद रात को केवल 2 घंटे सोते थे, रात भर केवल टीकाओं की रचना करते थे, ग्रंथ की रचना करते थे। तो रात को, आधी रात को उनको बुलाए, तो ये बंदा आया तो इन्होंने कहा प्रभुपाद आपने मुझे बुलाया। बोला हाँ। क्या कर रहे थे? सो रहा था। क्यों सो रहे थे? क्योंकि रात का टाइम है। मैं तो नहीं सो रहा हूं क्योंकि आप परमहंस हो, मैं भोगी हूं, तो तुम क्यों नहीं परमहंस बन सकते हो? तो ये सोचे कि मामला को आगे बढ़ाने से अच्छा है कि आधी रात है और पहले से सेटल कर लेते, प्रॉब्लम है क्या? प्रभुपाद आप बताओ कि मैं करूं क्या, जाओ जाकर सो जाओ। तो वैसे प्रभुपाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि जिन्होंने 75 भी क्रॉस कर दिया लेकिन तत्पर भी एक युवकों से भी ज्यादा कार्य करके दिखाए। जब प्रभुपाद अपने भक्तों के समूह में थे तो उस समय एक उनका युवक शिष्य सन्यासी वो थोड़ा पीछे से आराम से आ रहा था, तो बड़ा एक कुत्ता उनके पीछे लग गया। अब जब भौंकने लग गया, उसके पीछे लग गया, तो इतना घबराया, घबरा के सीधे प्रभुपाद तक पहुंच गया। प्रभुपाद के पास आए तो प्रभुपाद ने देखा है कुत्ता आया बड़ा सा, तो प्रभुपाद ने अपना डंडा लिया हैट करके बोला, तो बेचारा घबरा कर पूछ पैर के नीचे रखकर बैठ गया। तो ये तो हैरान हो गया, रे ये 70 साल का बूढ़ा और वह इतना युवक, मुझे इतना डर लग रहा, लेकिन इनके अंदर इतना धैर्य। तब हुआ क्या, वही भक्त आए जयपुर में, जयपुर में रसोई घर में कुछ सेवा कर रहे थे। उसी समय एक बंदर घुस गया। अब बंदर घुस गया तो बोले हाँ मुझे पता आइडिया क्या है, प्रभुपाद ने किया था, उस तो भी उठाया डंडा। अब हुआ क्या, वो तो था कुत्ता और ये बंदर, अब उठा लकड़ी उठ के सामने, तो इन्होंने तो मिक्सर का जार ही उठा के फेंक दिया। तो बोला ये वो कह रहा है, तो गए वापस, प्रभुपाद ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद बोले हटो, प्रभुपाद उससे बड़ा डंडा लिया और सीधे बंदर के हाट करके भागा, फिर बंदर सब कुछ छोड़कर भाग ही गया। फिर प्रभुपाद कहने लगे यू डोंट नो फॉर्मूला आई नो इट। और वैसे प्रभुपाद इतने वृद्धावस्था में भी उनके अंदर पूरा जोश था कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं हनुमान की तरह हूं। क्यों? क्योंकि हनुमान ने एक छलांग में लंका में जाकर सीता देवी के संदेश को, सीता देवी का और रामचंद्र जी का मिलन कराया। तो रावण सोच रहा था कि मैं सीता जी का यानी कि रामचंद्र जी की संपत्ति को हड़प कर रखा हूं और मैं इसका भोग करूंगा। मगर रावण की यह मूर्खता थी, रावण को यह नहीं पता था वो सीता जो है अब राम की संपत्ति की परछाई बन चुकी है, सीता तो अग्नि में समा गई है यानी कि अग्नि में सुरक्षित है। अब ये जो सीता है ये दुर्गा रूपी सीता है और इनके मिलन का जो संबंध का जो तालमेल हनुमान ने कर दिखाया केवल राम के संदेश पहुंचा कर एक ही छलांग में। इसी प्रकार प्रभुपाद कहते मैं भी देश से विदेश में छलांग लगाकर जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी तथाकथित रावण जो कि भगवान कृष्ण की संपत्ति को चुरा कर तिजोरी के अंदर रखे, वो है लक्ष्मी, जो लक्ष्मी राम की सेवा में उपयोग करना चाहिए उस लक्ष्मी को इन लोगों ने तिजोरी में रखा है और ऐसे लक्ष्मी को मैं छीन कर राम की सेवा में लगा रहा हूं। इस प्रकार प्रभुपाद ने हनुमान के पदचिन्हों पर चलकर प्रभु रामचंद्र जी की सेवा है, भगवान श्री कृष्ण के आंदोलन को उन्होंने पूर्ण किया। तो इसी पदचिन्हों पर हमें भी चलना है कि जो व्यक्ति जैसे रावण ने सोचा था कि सीता जी मेरी संपत्ति है लेकिन वो वास्तविक में उसका मृत्यु का काल था, इसी प्रकार आज के तारीख में जो कोई सोचता है कि मेरे तिजोरी में संपत्ति छुपी हुई है लेकिन वास्तविकतामय काल का स्वरूप है। जिस प्रकार रावण परेशान था सीता जी के कारण, सीता जी उसकी बात को नहीं सुन रही थी, और इस समस्या को यहाँ पर सारे लोग जो कि तथाकथित जितने भी छोटे मोटे रावण है उन लोगों को ये शिक्षा देना है कि कैसे उन लोग गलत फहमी में है। तो हनुमान ने वहां पर लंकिनी को लंकिनी के पास आए तो लंकिनी ने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते। लंकिनी काफी बलशाली थी तो हनुमान ने क्या किया, केवल एक ही जोरदार तमाचा दिया, कई कोस जाकर गिर गई दूर, फिर उठकर आई और आके प्रणाम की तो हनुमान देखे क्या हो गया, एक ही झापड़ में सुधर गए। तो ये कहने लगी मुझे ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि भविष्य में अगर कोई बंदर आकर तुम्हें झापड़ मारा तो समझना कि रावण का विनाश शुरू, और मैं जानती हूं कि रावण का विनाश शुरू हो गया, आप जा सकते हो। तो रावण के जो गेटकीपर लंकिनी, जो प्रथम गेटकीपर लंकिनी, वो सहमत थी कि रावण का विनाश शुरू हो चुका है, लेकिन रावण नहीं सहमत था। और ऐसे रावण ऐसे हनुमान जब अंदर गए तो बताया जाता है कि हनुमान को थोड़ा भूख लगा, क्या करे अब अंदर, वहां पर सारे जितने भी सेनागण थे वहां पर दुर्गा की पूजा करते थे, तो दुर्गा की पूजा करते थे, सभी लोग उनके जय जयकार करते थे। तो इन्होंने देखा कि अब मुझे कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, तब इन्होंने सीधे दुर्गा के विग्रह के पीछे जाके छुप गए और कहने लगे अरे मूर्खो। तो ये सारे जितने भी वहां के पूजा पाठ करने वाले जितने भी सेनागण थे सब कहने लगे अरे इतने साल तक कभी माता ने कुछ बोला नहीं, बोला तो भी क्या बोला, अरे मूर्खो। तो इन्होंने कहा हाँ माता क्या करना है, मुझे प्रसन्न करो। आप बोलो वैसे करेंगे, बहुत सारे घी से बने हुए लड्डू लेकर आओ और खीर पूरी जलेबी सब लेकर आओ बनाकर। और सभी के सभी सेना लोग रसोई घर में लग गए माता को प्रसन्न करना है, और भर पेट भर प्लेट उन्होंने रख दिया, कई लड्डू कई पूरियां इत्यादि सब उनके समक्ष रख दिया। और पीछे से कहने लगे अरे मूर्खो बाहर जाओ दरवाजा बंद कर दो, जब होएगा तो बुला लूंगा। सब बाहर गए दरवाजा बंद कर दिया और ये आए भर पेट खाली है, बोला आप थोड़ा कुश्ती लड़ने में थोड़ा आनंद आएगा, अब उड़ोरे का आप सब आ सकते हो, वापस छुप गए। आज सब आए तो कहा सभी लोग एकत्रित हो जाओ, और सब असुर लोग एक साथ आ गए और उन्होंने अपने आप को विस्तार किया, एक ही छलांग में सारे के सारे कुचल गए। और इस तरह हनुमान वो ढूंढ रहे कि सीता देवी है कहां, तो ढूंढते ढूंढते हताश हो गए, परेशान हो गए, रावण के सीधे भवन के अंदर घुस गए और वहां पर रावण सोया था। तो उन्होंने देखा ये तो बड़ा तेजस्वी दिख रहा है, रावण को देखा बड़ा बलशाली दिख रहा है, लेकिन ये मूर्ख भी है, क्यों, क्योंकि रावण खराटे मार रहा था, तो जो खराटे मार रहा है तो मतलब ये मूर्ख है। तब वो समझ गया मूर्ख की गिनती में आता है, लेकिन अगल बगल में कई सुंदर अप्सराए जैसी उनकी पत्नियां, तो कई पत्नी थे रावण के, और सबके अंदर ऐसी सुंदरता थी कि कोई उनके अंदर खोट नहीं था। हनुमान सबको गौर कर रहे, ये सीता है वो सीता है कौन सीता है। फिर हनुमान विचार करने मैं तो ब्रह्मचारी हूं, यहां लड़की लोग को क्यों देख रहा हूं। फिर कहा नहीं मेरा उद्देश्य है राम की सेवा। तब कहा नहीं मेरा उद्देश्य कुछ गलत नहीं है। फिर कहा कि यहां पर कैसी हो सकती है सीता। और फिर वो वहां से निकले, अशोक वाटिका के ऊपर उन्होंने छलांग लगाया। तो बताया जाता है कि रावण उसके पास आए सीता जी के पास, और वो देख रहे सीता जी के पास रावण आया है। तो रावण आया है तब उस समय सीता जी को यहां पर हनुमान परख रहे कि वास्तविक सीता है कि कौन है। अब यहां पर इसकी तुलना की गई है, हनुमान गुरु के समान और सीता जीवात्मा के समान, रावण हमारा दूषित मन के समान। तो यहां पर आए सीता देवी के पास रावण और कहने लगे तुम मेरी बात को सुन लो, मैं तुम्हें लंकेश्वरी बना दूंगा, यहां के सारे संपत्ति मैं तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, केवल एक बार तुम मेरी बात को हाँ तो बोल दो। यहां पर सीता देवी कहने लगी नहीं। तो पहला हनुमान ने सीता जी के अंदर पहले गुण को देखा और वो था आदे वसेया, एकाग्रता। एकाग्रता यानी कि उनके अंदर एक ही चित्त था, एक ही लक्ष्य था, वो है राम। ये कहने लगी मुझे राम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हनुमान समझे हाँ मैं शायद राम का संदेश दे सकता हूं। तो गुरु पहला परीक्षण करते शिष्य के अंदर और वो है एकाग्रता। गुरु देखते शिष्य के अंदर अभी भी एकाग्रता है, क्या अभी भी उनके अंदर कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा है कि कुछ और प्राप्त करने की इच्छा है, और उस प्रकार गुरु उनको आदेश उपदेश देते हैं। फिर उन्होंने देखा दूसरा गुण और वो था आदे वसेया। तो रावण कहने लगा सीता को कि सीता मेरी बात मान लो, राम तो नहीं आने वाले, राम तो मर चुके हैं। सीता ने कहा मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। तो क्या होता है कि जब हम भक्ति में लगते हैं तो भक्ति करते करते ये जो दूषित रूपी रावण हमें तरह तरह के प्रलोभन रखते हैं कि पहला तो मेरा जीवन फर्स्ट क्लास जी रहा था, इसमें कैसे अटक गया, ये क्या हो रहा है, और वैसे सोचकर मन उसको फिर घुमाने लगता है। लेकिन वहां पर शिष्य के अंदर एकाग्रता परखी जाती है। और दूसरा है आदे वसेया, मैं कब से हरे कृष्णा कर रहा हूं, ये राम राम बोल रहा हूं, कुछ फर्क नहीं गिर रहा है, शायद इसमें कुछ दम नहीं है, कुछ और मंत्र है क्या आपके पास। तो सोचने लगता है कि हरे कृष्णा महामंत्र बहुत सरल है, कुछ और मंत्र है। जैसे हमारे पड़ोस में एक माताजी थी, वो जब मैं अपने माँ को हरे कृष्णा महामंत्र जप करने को कहा तो वो भी आई और वो कहने लगी आप लोग हरे कृष्णा करते हो। मैंने कहा हाँ, मैं तो ओम क्लीन नमः जप करती हूँ। मैंने कहा ओम क्लीन नमः, वो क्यों? वो ओम क्लीन नमः जप करने से यहाँ का नस जो है सीधा हो जाता है। तो उनको उसका यहाँ का नस सीधा करना है, लेकिन हमें तो अपना जीवन सीधा करना है। और वैसे लोग सोचते हैं कि ये मंत्र में कुछ दम नहीं है, लेकिन सीता जी ने कहा नहीं मुझे राम आएंगे। और फिर तीसरा जो कि यहां पर हनुमान उनके पास गए, तो हनुमान जब गए तो हनुमान सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे बंदर के समझकर ठुकरा देगी। लेकिन हनुमान ने कहा मैं राम का संदेश लाया हूं, तो उन्होंने हनुमान को भी आदर दिया। तो गुरु जब आते हैं तो उनकी बाहरी हुलिया को न देखते हुए उनके अंदर के संदेश को लिया जाता है, जो कि सीता जी ने ग्रहण किया, और वो है शिष्य के अंदर तीसरा गुण, वो है आदर। इस प्रकार हनुमान ने उनके अंदर चौथे गुणों को देखा, वो था अनुसुईया। सीता जी के अंदर ईर्ष्या नहीं था। और चौथे गुण को देखा, वो है अनुसुईया। और फिर उन्होंने देखा लालसा। इस प्रकार हनुमान ने सीता जी के संदेश दिया, सीता जी के संदेश को वापस प्रभु रामचंद्र जी को दिया। तो इसमें कई शिक्षाएं हैं और मुख्यतः हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हनुमान कोई और नहीं, ये हमारे गुरु के प्रतीक हैं। गुरु जो होते हैं वो हमारे शब्द रामचंद्र जी के शब्द ध्वनि के मूर्तिमान स्वरूप। तो हनुमान, हनुमान यानी कि हनुमान के पिता का नाम है वायुदेव। तो वायु जब नाभि से गले तक आती है तो एक ध्वनि प्रकट होती है, तो प्रकट होने को कहते अंजना, जो कि हनुमान की मां का नाम था अंजना। तो वो जब ध्वनि जब प्रकट होती है और वो प्रकट होती है तो उस ध्वनि को अलग अलग लय से बोलने के लिए ये जो टोटी होती है वो उसे सहयोग करती है, और टोटी जैसे जैसे हिलता है अलग अलग ध्वनि निकलती है। इसीलिए इस टोटी को जो कि हनु कहते हैं, इसीलिए उनका महावीर का नाम पड़ा हनुमान। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा। हम इस गुरु शुद्ध सेवक प्रभु के बहुत आभारी है जिन्होंने अपने अमूल्य समय निकालकर हमें समय दिए और ये हनुमान कथा का आस्वादन लाभ करवाया। आप इस गुरु शुद्ध सेवक प्रभु को जानते ही होंगे कि सादा जीवन, नम्र स्वभाव और एकदम लेक्चर में सरलता, ये उनके मुख्य परिचय है। तो ऐसे ऐसे प्रभु जी का जो आभार है, हम आभार प्रकट करेंगे। हम अपने वैष्णव पद्धति के अनुसार एक बार उच्च स्वर से हरिनाम का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे
हरे राम हरे राम।
और हम आप सब भक्तों का भी आभारी है जिन्होंने इतने उत्साहपूर्वक इस प्रसंग में भाग लिया।